Ladies and gentlemen, good day and welcome to the GR Infra Projects Limited 2Q FY23 results conference call hosted by HDFC Securities. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Parikshit Kandpal from HDFC Securities. Thank you, and over to you, sir.
Thanks, Anvi. I would like to thank the management of GR Infra for giving us this opportunity to host the call. Today from GR, we have Mr. Rajendra, Director of the company, and Rathi ji, he is the Group CFO. Without taking any further time, I would now like to hand over the floor to the management for their opening remark and the updates on the quarter. Thank you, and over to you, sir.
Thank you, Parikshit ji. Good afternoon, ladies and gentlemen. मैं GR Infra Projects Limited की ओर से Q2 Financial Year 23 के earnings call में आपका स्वागत करता हूं और मेरे साथ में Group CFO श्री आनंद जी राठी मेरे साथ में हैं। अब आपके साथ में second quarter के key highlights के बारे में बात करना चाहूंगा। ज्यादातर project में हमें appointed date मिलने के कारण इस quarter में पिछले साल के इसी quarter के comparison में execution में improvement हुआ है। Standalone basis पे अगर देखते हैं तो company का operational revenue करीब 5% के increase के साथ में 1,777 crore rupees रहा, जो पिछले साल इसी इस quarter के Q2 quarter के 1,699 crore rupees था और इस quarter में company को करीब 6 crore rupees का early completion bonus भी मिला है। Company का EBITDA rupees 260 crore rupees रहा, जो पिछले साल इसी quarter में 278 crore rupees था। 30th September 2022 को L1 project के include करते हुए हमारी order book value करीब 16,200 rupees है, जिसमें L1 project के का करीब 592 crore rupees भी value शामिल है। 30th September 2022 को company की executable order book करीब 10,100 crore rupees है। Order book में करीब 93% share road और highway development projects का है। Q2 financial 23 में company ने 3 projects के financial closure achieve किए और अभी तक company को 2 project का appointed date भी मिल चुका है। आज company के पास में no operational और no under construction projects हैं और 5,500 crore rupees के 6 HAM projects की appointed date अभी आनी बाकी है और इन projects की भी appointed date इस साल में आनी expected है, इस financial years में। इस quarter तक company ने करीब 16,450 crore rupees की bids submit की है, जिसमें 1,000 crore rupees का metro project है और 15,000 crore rupees के करीब 15 road projects हैं और इसके अलावा 450 crore rupees का एक roadway project भी शामिल है। Industry में competition intensity अभी कम हो रही है, जो कि recent bidding pattern में भी देखने को मिल रही है। Government का infra focus से हम काफी excited हैं, तथा हमें पूरा विश्वास है कि हम हमारे इस साल के 15,000 crore rupees का जो target है, उसको लेने में successful रहेंगे। इस target को हम पूरा कर पाएंगे। इस basis पे हमें पूरी उम्मीद है कि next year, यानी financial year 24 से हम अपने yearly 15%-20% के जो growth track पर आ सकते हैं। Inflation और interest rate की जो volatility है, वो अभी भी continuing में risk बनी हुई है। InvIT के बारे में बताना चाहूंगा। InvIT की progress में आपको मैं बता दूं कि अभी project की SPVs का technical due diligence आने वाला है, कुछ week में complete हो जाएगा। हम expect कर रहे हैं कि draft order documents इस calendar year तक ready हो जाएगा। CBI matter के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारे employee अभी bail पर release हो चुके हैं, पर investigation अभी भी जारी है। हमारी company एक law abiding company है और हम agency के साथ में पूरी तरह से cooperate कर रहे हैं। Recent में हमें एक department का 1 महीने का letter मिला है, जिसे हम revalidate कर रहे हैं। अभी आपको आनंद जी company के quarterly highlights के बारे में बताएंगे। Thank you.
Thank you, sir. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Good afternoon, all. Let me run past you financial highlights for the of the company for the quarter ending September 2022. So our standalone revenue from operation is at 1777 crore in the quarter, with an increase of around 77 or 78 crore compared to the same quarter of the previous year. Similarly, our consolidated revenue from operation also increased by 254 crores at rupees 2136 crore, with a growth of approximately 13% compared to the same quarter of the previous year. Our standalone EBITDA margin for the quarter was around 14.63%, which is lower in compared to, of course, compared to the same quarter of the previous year. This decrease was mainly on account of the additional provisioning as well as some CSR expenses, but also elevated level of inflation is also one of the cause for this decrease. Our EBITDA margin at group level has increased to 28% in quarter ended September 2022, from the 21% in the quarter ended September 2021. It's largely due to increase in the financial income recognized in the current period due to revision in the interest rate or bank rates. Standalone PAT margin stood at around 164 crore in the current quarter, which was 163 crore in the previous quarter of the last financial year. PAT margin at consolidated level increased by 78% to the tune of 336 crore in the current quarter, as compared to 189 crore in the same quarter of the previous year. Our standalone net worth stood at around 4,848 crores at the end of the current quarter, which was almost 4,364 crores at the end of the last financial year. Our net worth at consolidated level is around 5,551 crore at the end of September 2022, which was 4,812 crore at the end of fiscal 2022. Our standalone total borrowing outstanding at the end of September 2022 is around 911 crore, which includes short-term borrowing of 30 crore approx, with debt-to-equity ratio of 0.19. This was rupees 1,055 crore at the end of June 2022. Our total consolidated borrowing outstanding at the end of September 2022 is 5,269 crore, with debt-to-equity ratio of around 0.95 times. During the quarter, company has made addition to the fixed assets amounting rupees 50 crore. A net block of property, plant and equipments, including CWIP, is approximately 1,581 crores at the end of September 2022. Investment in our subsidiary companies in form of loans and equity is around 1,567 crores at the end of September 2022. It was around 1,320 crore at the end of fiscal 2022. Balance contribution required to be made for our HAM projects is approximately 1,800 crores, of which we are expecting a contribution of 450 crore in the current fiscal itself. Our trade receivables at the external basis are around rupees 1096 crores at the end of September 2022, as compared to 716 crore at the end of fiscal 2022. Our trade receivable at the consolidated level are around 534 crore at the end of September 2022, as compared to 664 crores at the end of fiscal 2022. Increase in trade receivables mainly on account of, you know, debtors from our own SPVs, where loan disbursement has been, you know, deferred by us. Our unbilled revenue at the standalone basis is around 727 crore at the end of September 2022, as compared to 581 crore at the end of fiscal 2022. Our unbilled revenue at the console level is around 388 crore at the end of September 2022, as compared to 393 crore at the end of fiscal 2022. Inventory level has also gone down. It's around 923 crore at the end of September 2022, as compared to 1,022 crore at the end of fiscal 2022. Our cash and cash equivalent at the standalone basis is around 290 crore at the end of September 2022, as compared to 445 crore at the end of fiscal 2022. cash and cash equivalent at the console level is around 900 crore at the end of September 2022 as compared to 1095 crore at the end of fiscal 2022. So our order book at the end of half year, at the end of current half year, stood at around 16,220 crores, which includes 592 crores of projects with L1 status. Our standard mobilization advance, outstanding at the end of September 2022 is around 259 crores as compared to 71 crore at the end of fiscal 2022. I sincerely thank all the stakeholders, including employees, business partners, vendors, bankers, auditors, who are part of the growth journey of our company. On behalf of GN Properties Limited, I thank everybody who's attending the earning call. May I request moderator to for opening of the floors for question and answer session.
Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may enter star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Mohit Kumar from DAM Capital. Please go ahead.
Hello. Yeah. Good afternoon, sir. Good afternoon, and thanks for the opportunity. So my first question is, how does the bidding pipeline looking like from NHAI? And any color on the order outlook for H2 FY23? And what you observed in the H1, the bidding has been pretty muted. Can you expect this to pick up in H2 substantially? Do you expect it to be better than FY22?
Members of the management, we are not able to hear you.
Yes.
पाइपलाइन अभी पाइपलाइन कितनी 55,000 सर इस साल जो पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट हैं करीब एनएचआई में जो जिनको हम टारगेट कर रहे हैं 55,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स हैं और ये इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये सभी कंप्लीट बिड हो जानी चाहिए जो अभी पाइपलाइन में बिड मतलब टेंडर फ्लोट हो चुके हैं कुछ और प्रोजेक्ट्स भी इसमें आने की अभी टारगेट है नीचे का और ये कंटिन्यूशन में इस साल 23 और 24 में जो गवर्नमेंट जिस तरह से अनाउंस कर रही है कि पिछले साल भी इन्होंने 2 करोड़ रुपीस के हेम प्रोजेक्ट्स के लिए कहा था और अगले साल भी 24 में भी तो अभी पाइपलाइंस बहुत अच्छी है ऑल्दो जो गवर्नमेंट की जिस तरह से वर्किंग रहती है कि फर्स्ट 3 क्वार्टर में जो बिडिंग का जो वर्किंग है वो ज्यादा नहीं हो पाता है और बिडिंग का जो वर्किंग है वो 4th क्वार्टर में ही हो पाता है और ऐसा लगातार पिछले 2-3 साल में देखने को मिल रहा है और हमारे कंपनी को जो प्रोजेक्ट अवार्ड भी होते हैं जनरली जो है लास्ट क्वार्टर में ही मिल पाते हैं और इस तरह से अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि 4th क्वार्टर में हमको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे
Understood.
और इसके अलावा कंपनी हाईवे के अलावा ट्रांसमिशन और रेलवे और मेट्रो में भी लगातार बिडिंग कर रही है और इनमें भी अच्छे अपॉर्चुनिटी आ रही है मतलब प्रोजेक्ट की जो पाइपलाइंस हैं वो बहुत अच्छी बनी हुई है
Understood, sir. Secondly, sir, second half, your first half in your revenue has been slightly muted. How do you expect the H2? Of course, you said that the FY24 onwards, you expect that 15% growth aega. But the H2, do you expect it to be flattish? And also some comment on the EBITDA margins, which you are expecting in FY23?
So H2, I would say it would be more kind of flattish, reason being that the project where, you know, our depleting order book, I would say, because whatever projects right now we are having in our hand and which is executable, right, we'll be executing on those projects only, and those projects are to be executed in next 2 years of time, right? So given that not much orders we are having within our portfolio, for S2, yes, of course, I mean, I don't believe that there would be growth of 15-20%, as we have already given the guidance that for the current year, our growth would be, you know, in terms of, if we compare it with the previous year, it would be in the range of 5-10% only. And yes, of course, in terms of EBITDA margin, that we have already mentioned that our EBITDA margin would be, you know, between 15-16%, again, depending on how inflation, you know, pan out, basically. Though we in last quarter, we started seeing that inflation was coming down, but again, from last 1 week, probably we see that inflation is going up. So that's how, I mean, it's depending on the function of inflation and all that. But my point is that probably will be, you know, having that flattish growth for the current year.
Understood, sir. Thank you. All the best, sir. Thank you.
Thank you. The next question is from the line of Shravan Shah from Dolat Capital. Please go ahead.
Thank you, sir. So, sir, just continuing the question. So, in terms of once we have the flattish second half, and then the 15-20% growth in 24, so that momentum should continue for at least couple of years.
बिल्कुल ये जो है आने वाले मुझे ऐसा लगता है आने वाले 3-4 साल तक ये ग्रोथ बनी रहेगी क्योंकि गवर्नमेंट का जिस तरह से इंफ्रा में फोकस है और जिस तरह के जो वर्क पेंडिंग है इंडिया में इंफ्रा में बहुत काम होना बाकी है तो अगले 3-4-5 साल तक तो लगातार इस तरह की ग्रोथ रहेगी निश्चित तौर पर.
Okay. और सर हम जो बोल रहे हैं कि 15,000 करोड़ इनफ्लो वी आर टारगेटिंग सो अभी तक कितना अपना लास्ट टाइम वी सेड अराउंड टिल नाउ हाउ मच वी हैव रिसीव्ड.
अभी अपन ने बिड जो सबमिट कर रखी है जैसे कि मैंने बताया था कि करीब 16,500 करोड़ रुपीज की हमने बिड कर रखी है इस क्वार्टर में हमने 16,000 की बिड कर रखी है और टेंडर ओपन होने बाकी हैं. तो अभी ऐसा जो टेंडर ओपन होने बाकी हैं तो उन्हीं से अभी पता चलेगा. अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमको ये कुछ काम मिलने चाहिए 2-3 काम हमको कम से कम इस जो बिड सबमिट कर रखी है उनमें मिलने चाहिए. लेकिन आने एक्चुअल में बिडिंग जो है ना अभी आप देखेंगे तो पहले 3 क्वार्टर में कोई बहुत ज्यादा बिडिंग होती नहीं है और लास्ट क्वार्टर में ही बिडिंग ज्यादा होती है. और इसमें क्या है जो इनिशियली क्या है कंपटीशन इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा रहती है. हम लोग थोड़ा सा सिक्योर बिजनेस अपने आप को उस तरह से चलते हैं तो आने वाले टाइम में जो लास्ट क्वार्टर है उसी में हम ज्यादा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देखते हैं.
ओके
तो ऐसा ही हुआ है.
हाँ समझ गया सर. सो अभी आगे जाके ये जो अपने बिड भी सबमिट करी और आगे भी टारगेट कर रहे हैं तो दो चीज है. एक तो अभी कंपटीशन क्या लग रहा है आपको इन पर्टिकुलरली हैम एंड ईपीसी में कैसा है एंड ये 15,000 करोड़ जो टारगेट कर रहे हैं सो लास्ट टाइम वी सेड 10-12,000 करोड़ हमको रोड में अपने को चाहिए. सो मोस्टली दैट वुड बी इन द हैम फॉर्म एंड ब्रॉडली वही समझना है कि ये कंपटीशन कैसे रहेगा नहीं ये अगर आ जाते हैं तो आगे जाके मार्जिन जो हमारा है 15-16% तो वो सस्टेनेबल है.
देखिए क्या है कि कंपटीशन कूल डाउन तो हुआ है पर अभी एकदम जो पहले की स्टेज थी उस लेवल पर तो नहीं है प्री कोविड लेवल पर तो नहीं है लेकिन कंपटीशन कूल डाउन जरूर हुआ है और जो लोग एग्रेसिव बिडिंग कर रहे थे उन लोगों को समझ में आ रहा है कि उतनी एग्रेसिव बिडिंग सस्टेनेबल नहीं है. और 15-16% एबिटा मार्जिन मेरे को लगता है इस इंडस्ट्री में ये बना रहेगा और अगर इस इंडस्ट्री मतलब ये जो मार्जिन है ये एक सस्टेनेबल मार्जिन है जो कि इंडस्ट्री के लिए जरूरी है.
ओके समझ गया सर. एक लास्ट ऑन द डेटा पॉइंट्स सो यू सेड 1800 करोड़ में तो इक्विटी और डालने का है उसमें 450 करोड़ ये साल में सो 24 एंड 25 में लास्ट टाइम वी सेड 700 करोड़ सो दैट रिमेन्स द सेम.
दैट्स रिमेन्स द सेम सो फार.
एंड जो 6 अपना हैम प्रोजेक्ट्स है जहां अपॉइंटेड डेट बाकी है 5500 करोड़ सो सब कुछ अपॉइंटेड डेट मार्च फरवरी में कि ये दिसंबर में भी कुछ आएंगे अपॉइंटेड डेट
वो दैट वी कैन एक्सपेक्ट ग्रेजुअली. आई विल नॉट से कि पूरा मार्च में ही आएगा. maybe let's say now December mein kuch aa jayega. Abhi, I mean, we are expecting ek do project to within next couple of days, I would say couple of weeks in November itself. So, but unless until we receive that letter na, we can't say something. But point is that most of the, I mean, all the projects will be having the appointed date before March.
Okay. समझ गया. एंड एंड सर कैपेक्स अभी हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में 215 करोड़ का कर लिया, तो फुल ईयर के लिए लास्ट टाइम वी सेड 300 to 400 करोड़, सो वो सेम रहेगा.
या सो वो दैट कैपेक्स टारगेट आर ऑलमोस्ट सेम, 350 का अपने टारगेट गाइडेंस है एंड दैट वुड बी द सेम रेंज.
एंड हैम का डेटा सर अभी कितना होएगा एज ऑन सितंबर?
हैम का डेटर वुड बी आई थिंक 750 करोड़ के आसपास का है.
ओके ओके, दैट वाज द मेजर रीजन इन टर्म्स
ऑफ 600 करोड़.
ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.
थैंक यू.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ आशीष शाह फ्रॉम सेंट्रम ब्रोकिंग, प्लीज गो अहेड.
या गुड आफ्टरनून सर. सर अगर ये डिपार्टमेंट का जो आपने नोटिस अभी एक्सचेंज में डाला है, कैन यू जस्ट इलेबरेट अ लिटिल बिट, व्हाट इज द एनी रीजन दैट दे हैव मेंशन, एनएचआई हैज मेंशन इन द लेटर?
सर ये हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं, वैसे उन्होंने कोई रीजन दिया नहीं है और इसको ये हमको आज ही मिला है रिसेंटली, और अभी इसके ऊपर इवेल्युएट कर रहे हैं बीच में क्या हमको किस तरह से एक्शन लेना चाहिए और क्या इसको करना चाहिए.
राइट. सो सर अभी हमने कहा कि हमने 10 हैम प्रोजेक्ट बिड करके रखे हुए इस समय, सो क्या इसकी बिडिंग के आउटकम पे इफेक्ट पड़ेगा इस डिपार्टमेंट का, या यू थिंक दिस इज बियॉन्ड द बिडिंग डेडलाइन इज बियॉन्ड दिस वन मंथ पीरियड?
सर ये लेटर हमको अभी मिला है और इसका इवेल्युएट कर रहे हैं, हम नहीं जानते ये एनएचए इसमें किस तरह से एक्ट करेगा, इसको इवेल्युएट किया जा रहा है और इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे, जैसे भी होगा उसको हम आने वाले टाइम में आपको बता पाएंगे.
मतलब एज ऑफ नाउ आशीष जी, वी आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट कि एक महीने का डिपार्टमेंट है, अभी उसके लिए इम्प्लीकेशंस हैज टू बी यू नो, उसके लिए देखना पड़ेगा मतलब व्हाट आर द ऑल इम्प्लीकेशंस, राइट, बिकॉज तो वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, वी नीड यू नो इवेल्युएट दोस ऑल थिंग्स.
ठीक है सर. और इनविट के ऊपर सर इफ यू कैन अपडेट, आई मीन यू डिड मेंशन द ओपनिंग रिमार्क्स, लेकिन in terms of timelines, are we looking to go live by the before the end of this financial year, and any amount that we have formed up on how much we are raising?
Wo amount as of unless until, I mean, so it's the basic of you know interaction with what, I mean, I'll be you know interacting with the investors also, and then basis will be you know forming our decision in terms of you know what amount we'll be raising at InvIT level. ये जरूर है कि वट एवर अमाउंट दैट वुड बी रेज दैट वुड बी यूटिलाइज फॉर रिपेमेंट ऑफ यू नो डेट एट एसपीवी, वो जरूर है. जीआर में अभी एज ऑफ नाउ वी आर नॉट रेजिंग एनी कैश बिकॉज ऑफ दैट इनविट. इनविट टारगेट वॉज कि दैट विल बी टारगेटिंग दैट इनविट लॉन्च बिफोर दिस फाइनेंशियल ईयर एंड, वो दैट टारगेट इज जस्ट कंटिन्यूइंग एंड द प्रोसेस इज ऑन.
राइट. ओके सर, थैंक यू. Thank you, that's all.
Thank you. The next question is from the line of Praful Kumar from Diamond Asia. Please go ahead.
Hello, good afternoon, sir.
Yes, we can audible? Hear you. Yeah, we can hear you. Please.
Yeah.
Sir, just sir, दो ही सवाल हैं. एक तो अभी इनविट का ही exactly कि सर अमाउंट कितना देख रहे हैं और इससे क्या अंतर पड़ेगा अपने बैलेंस शीट पर, अपने ऑपरेशंस पे, हाउ डज इट हेल्प द कंपनी इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ. और दूसरा जो आपने बीच में ट्रांसमिशन बिजनेस भी किया था शुरू, उस पर क्या अपडेट है सर, क्या रहा मतलब टीम बिल्डिंग क्या रही? और तीसरा फाइनल क्वेश्चन, अगर मैं हिस्टोरिकली देखूँ अपनी कंपनी हर यू नो लीन पीरियड में, जैसे लीन पीरियड है लास्ट एक साल का डेढ़ साल का, कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत काम करती है और उसके अगले 5 साल यू नो इट्स अ लैडर अप इन टर्म्स ऑफ योर रेवेन्यू एंड एबिटा, एब्सोल्यूट नंबर्स दे गो अप मीनिंगफुली, दैट्स द पैटर्न दैट आई हैव सीन फॉर लास्ट 10-15 इयर्स इन योर कंपनी. सो व्हाट प्रिपरेशन यू हैव डन इन लास्ट 2 इयर्स इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग और अगले 3-5 साल जो मतलब अब यहाँ से शुरू होना चाहिए ऑर्डरिंग, आपको कॉम्पिटिशन कम हो गया है, सो थिंग्स आर इन योर फेवर राइट नाउ, इंडस्ट्री इज स्टैक्ड अप नाइसली एंड वी गो इनटू इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर, तो कहाँ मतलब ओवर अ मीडियम टर्म क्या कैपेसिटी बिल्डिंग है, तो कहाँ देख रहे हैं सर कंपनी को?
हाँ तो सबसे पहले मैं आता हूँ इनविट पे। तो इनविट पे हम लोग जो कंपनी लेवल से ये सबसे बड़ा जो चेंज होगा ये केवल डेट रिड्यूस होगा, कंपनी की बैलेंस शीट से डेट हटके और इनविट पे आ जाएगा और अपन जो मार्केट से जो ले रहे हैं उसमें डेट रिड्यूस करेंगे। तो कंपनी लेवल पर एज सच जो बैलेंस शीट लाइट हो जाएगी और कंपनी के पास में मोर विजन आएगा कि आने वाले जो हैम के प्रोजेक्ट्स हैं हम कंप्लीट करके और इन्विट में ट्रांसफर कर सकें और जो इन्वेस्ट एज ए इन्वेस्टर आ जाए और हम लोग एफिशिएंसी अपनी जो एग्जीक्यूशन की एफिशिएंसी बढ़ा सके। और इन्विट की प्रोग्रेस जहां तक मैंने आपको बताई थी कि इसके जो सेबी के साथ जो इसका
डीओडी पे काम चल रहा है अपना एंड ड्यू डिलीजेंस इज ऑन इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट एसपीवी जो अपन ने पहले भी बोला प्रॉब्ली विल बी यू नो कंप्लीटिंग आर ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस एंड विल बी एबल टू कंप्लीट दैट डीओडी डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बाय एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। उसके बाद में आर टारगेट ऑफ लॉन्चिंग दिस इन्विट इज बिफोर दिस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज फाइनेंशियल इटसेल्फ आई मीन FY23। उसमें अमाउंट आज की डेट में थोड़ा बोलना मुश्किल है कितना रेज करेंगे बट एज ऑफ नाउ आर प्लान इज टू यू नो ट्रांसफर 7 ऑपरेशनल हैम एसेट जो अभी हम लोग उसमें वी आर टारगेटिंग कि ये सारे टारगेट उसमें ट्रांसफर करते हैं बिफोर द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर 2023। और इनविट में हमारे को एक एडिशनल आई मीन दैट इनविट वुड बी काइंड यू नो विल बी अंडर दैट इनविट दैट टीम हैज ऑलरेडी बीन सेटअप वो इंडिपेंडेंट टीम भी सेटअप हो रखा है दैट दोज प्रोसेस इज यू नो टेकिंग केयर ऑफ बाय दोज टीम। और इस इनविट में अपन नॉट ओनली दैट विल दैट इनविट विल बी यू नो एक्वायरिंग द एसेट फ्रॉम जीआर दे विल बी यू नो टारगेटिंग इवन आउटसाइड एसेट एज वेल वो भी अपना टारगेट है। सो दैट इनविट वुड बी यू नो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म वेयर आर एफिशिएंसी व्हाट आर कॉन्ट्रीब्यूशन वुड बी यू नो ब्रिंगिंग मोर एग्जीक्यूशन स्किल ऑन दैट इनविट while investing skill would be you know will be हमने उसके लिए टीम सेटअप किया है एंड दैट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री इटसेल्फ वी हैव हायर्ड द पीपल राइट। सो ये एक मतलब वी आर टारगेटिंग की इफ वी कैन यू नो गिव गुड रिटर्न्स टू इन्वेस्टर आल्सो बाय यू नो कंबाइनिंग द इन्वेस्टमेंट स्किल अलोंग विद एग्जीक्यूशन स्किल्स दैट इज आवर टारगेट। और अपने को लॉन्ग रन में हमारे लिए मतलब इट वुड बी इजियर फॉर अस कि प्रोजेक्ट बना के ट्रांसफर करना। So for me, I mean, GR would be, you know, kind of acting as a EPC agency only going forward. Yeah. And this would be again a monetization vehicle also. So हम लोग जो इसको target भी वैसे कर रहे हैं। So this is all about InVit.
और transmission business में हमने जैसे पिछली बार बताया था एक project हम ले चुके हैं और execution उसका under process है, पूरे progress में चल रहे हैं हम as per milestone उसकी progress चल रही है। और आगे अभी जो पाइपलाइन में बिजनेस है करीब 5 से 6 हजार करोड़ रुपए के जो पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट्स उनको हम बिड कर रहे हैं और इसके लिए जो एग्जीक्यूशन और इसके जो ऑपरेशन की जो टीम है वो अपने प्रॉपरली प्लेस्ड है और इसके ऊपर वर्किंग चल रहा है। आने वाले टाइम में जिस तरह से पावर की रिक्वायरमेंट और जो ग्रोथ है आने वाली है तो एनर्जी सेक्टर में हम लोग पूरी तरह से फोकस हैं और पावर ट्रांसमिशन के अलावा भी दूसरी चीजें देख रहे हैं कि क्या चीजें हम किस तरह से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। अब थर्ड आता हूं आपके थर्ड क्वेश्चन पे जो कैपेसिटी बिल्डअप पे, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है इसके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी बहुत सारी चीजों पर काम चल रहा है पर मैं आपको अभी इसमें गाइडलाइन देने में थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं कोई पर्टिकुलर आपको एक सेक्टर बता सकूं कि यहाँ पर हमारा डिसीजन हुआ हो, ऐसा नहीं है। लेकिन काम बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग, जैसे हमारी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो इंजीनियरिंग हो चाहे वो डिजाइन हो उसके ऊपर भी काम किया है। जैसे हमने अपनी डिजाइन स्ट्रेंथ बढ़ाई है, फाइनेंशियल में भी हम लोग नए लोगों के साथ में एसोसिएट हुए हैं जो हमारे पार्टनर बने हैं जिस तरह से, उसमें हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बढ़ी है। और आगे आने वाले टाइम में और कुछ सेक्टर भी देख रहे हैं बट ये एक थोड़ा सा मतलब अभी इस लेवल पे ये बताना मुश्किल है कि अपन और क्या नया कर रहे हैं, ये आपको मैं मतलब आने वाले क्वार्टर्स में बता पाऊंगा।
और एट द सेम टाइम जो इनविट अपना लॉन्चिंग और यू आई मीन एंटर इनटू दिस इनविट स्पेस दैट इज आल्सो काइंड ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग व्हिच वी आर यू नो एंड रीजन बीइंग दैट कि अभी हम लोग ने पहले इन पास्ट ऑल्सो वी हैव सोल्ड आवर प्रोजेक्ट्स टू एन इन्वेस्टर. तो दिस टाइम वी आर ट्राइंग टू यू नो बिल्ड अप आवर कैपेसिटी. वी वॉन्ट टू यू नो आई वुड से हमारे को एनकेस करना है, बिकॉज सी जब हमने प्रोजेक्ट पास्ट में बेचे थे प्रॉब्ली विल नॉट एबल टू यू नो एनकेस ऑन आर ऑपरेशनल एक्सीलेंस, क्योंकि मैं ओवर टाइम करता ही नहीं था प्रोजेक्ट का, तो मेरे को उसका सो आई हैव टू लूज ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट. तो अब ये हमारे को इज गोइंग टू गिव मी यू नो रिटर्न इन नेक्स्ट 10-15 इयर्स. जब मैं कंटिन्यू आई कंटिन्यू टू बी ओवर टाइम ऑफ आवर प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर दोज एसेट वाइल आई नॉट बी होल्डिंग दोज एसेट इन माई बैलेंस शीट. तो ये भी एक काइंड ऑफ इट्स अ काइंड ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग विच वी आर डूइंग आर इन आर कंपनी ऑल्सो.
Raful, you have any questions?
No, thank you, sir.
Thank you. Ladies and gentlemen, if you would like to ask questions, please enter star and one. The next question is from the line of Tina Virmani from Kotak Securities. Please go ahead.
Hi, sir. My question is related to margins. You mentioned initially that there was certain additional provisioning and some elevated costs in the quarter. Can you please specify what is this provisioning for, and if you can quantify the impact or the amount related to the same?
So, yeah, Tina. So, if we are comparing it with quarter of the last financial year, right? So, my additional provision is with respect to the debtors, long outstanding debtors, I would say. And there we have, you know, made some policies for which we are, you know, providing for. If it is, you know, it's on basis that age bucket which we have, you know, decided internally. And as and when those monies is received back, or then we'll be, you know, again, we'll be treating as an income. So that is also, you know, you'll have that, in fact, in other income, you'll find this impact also where, you know, my other income is quite high because of, you know, some write back of provision which we have made in past. So it's as per policy which we, you know, internally decided that to provide for the debtors, which are, you know, basis that their age limit. And in current quarter, the amount of provision is around 12 crore, which was not there in the previous quarter. Previous means the last year, current quarter. Last year, this quarter. And some CSR provisions also. I mean, we are, you know, started, you know, providing for CSR expenses on quarterly basis. Earlier, it was on yearly basis.
Right?
So, to that extent, there around 4-5 crore is on account of CSR expenses, 12 crore is on account of debtors. So that's these are the additional provisions.
So even if I adjusted with the this additional provisioning as well as the CSR provisioning, had it not been there, margins would have improved to somewhere around 13.8% as compared to 12.8%, which is reported in this quarter. X of other income. So traditionally, your margin mix, and even on the guidance, you are saying that it will be in the range of 15-16%. So, and looking at the current set of numbers, it is coming out to be lower than 14%. So, what is it related to? Or is it going to be
the same? So, it is, that inflation impact is also there to certain extent. Bonus ka bhi impact is the last quarter it is around 12 crore. Now, this quarter it is 6 crore. So, bahut sara kuch impact hai. Maybe because of some inflation. Inflation ko is to evaluate is very difficult here. But what we believe is that some certain margin has gone down. Margin was impacted because of some inflation also. Lekin, yes, and my execution also for current quarter, I'm not able to. Or ek cheez aur hai, which is probably is very difficult to evaluate, but then my project status. What kind of project status I am, you know, in the current quarter, what kind of bill I have, you know, raised and for what activity. So, thoda usse bhi depend karta hai. But, so we are confident going forward will be in the range of again 15-16%.
Okay. And inflation, that is, ye to pass through hoga na, this impact.
Inflation pass through hota hai. Ek provisions are there. We say there is a pass through, but it is not direct linkage. So it is always, you know, it links to CPI, WPI, while, you know, certain raw material or certain materials, you know, so it's not having direct linkage with those, you know, index and all that. And that also comes with some lag. So it's very difficult, but yeah, that is the one cause, one reason is there.
So that will not be impacting coming quarter, because now raw material prices to an extent have already started correcting.
See, there may be impact of inflation may be around 1%, right? So what I'm saying is, if I'm saying then 15-16% kind of EBITDA margin we are expecting. So ab uska 50 inflation is coming down. Abhi kabhi it's volatility. I mean, inflation is so far is volatile, right? Kabhi news aata hai, and maybe because of some dollar rising, some maybe because of some crude rising and all that. So point is, yes, it effectively it will be depending on, you know, what kind of inflation will be, you know, inflation era we will be into. But yes, I mean, we are confident looking to the current situation, we are confident that we'll be getting that kind of margin going forward.
Okay, and in the remaining H2 also.
Yeah.
And my second question is related to your inflow target of 15,000 crore. So I think you mentioned it to some other participant also that most of it would be coming in by quarter four. But given the recent notice regarding debarment of the company for a month, so almost like effectively December would go in that. And it will be just quarter four wherein you would be participating for particularly for the NHAI bids. So do you expect the entire shortfall for the year as of now to be covered up in fourth quarter of around 15,000 crore or maybe little lesser than that?
अगर अपन वैसे भी देखें ना ये जो डिपार्टमेंट है वो केवल एक महीने के लिए है. ऐसा तो कोई चैलेंज नहीं है कि आने वाले टाइम में कोई बहुत ज्यादा टेंडर नहीं है इस महीने में. मैक्सिमम जो टेंडर्स हैं वो दिसंबर से मार्च के बीच में है. तो जब तक अपना डिपार्टमेंट का ऐसा कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन इसको भी हम आज ही हमको मिला है तो हम इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं कि इसको कैसे रेस्पॉन्ड करना है, एनएचए के साथियों को किस तरह से डील करना है. क्योंकि ऐसा हमारे ऊपर किसी तरह का कोई ब्लेम नहीं है, लेकिन एनएचए ने ये एक्शन लिया है, इसको हम किस तरह से डील करेंगे वो एक देखना है. लेकिन अभी भी हम पूरे होपफुल हैं कि जो क्वार्टर फोर है उसके अंदर हम लोग अपने जो टारगेट है वो अचीव कर सके. जिस तरह से पाइपलाइन है हम काफी एक्साइटेड है. गवर्नमेंट की पाइपलाइन जो हेम के अंदर है और वो काफी अच्छी है. और अभी जो मार्केट की सिचुएशन है, जिस तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें हमारी पोजिशन काफी अच्छी है और हम इसको अचीव करने की काफी अच्छी पोजिशन में है.
ओके. सर लास्टली ऑन दिस डिबारमेंट, दिस इज रिलेटेड टू द सीबीआई केस दैट हैपेंड सम टाइम बैक, और इट इज रिलेटेड टू एनी अदर रीजन? आई मीन नॉर्मली इट आल्सो हैपेंस बिकॉज ऑफ सम मिसहैप ऑन द साइट. सो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है कि कोई साइट पे कुछ प्रॉब्लम हुआ बिकॉज ऑफ विच एनएचएआई वुड हैव डिबार्ड यू फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग?
अभी हमको इस तरह का कुछ भी, मतलब इस लेटर से कुछ भी पता नहीं चल रहा है. लेकिन लगता यही है कि जो सीबीआई इंक्वायरी थी उसी से रिलेटेड होना चाहिए. लेकिन अभी तक चूंकि ये आज ही मिला है, इसके बारे में पता किया जा रहा है कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्यों हुआ है.
सो इट्स टू अर्ली टू से मतलब व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, बट देन पॉइंट इज व्हाट्स द पॉइंट यू आर मेकिंग इज इफ देयर इज एनी मिस हैपनिंग एट साइट वी आर नॉट अवेयर दिस फैक्ट. अगर ऐसा कुछ होता तो दैट ऑल्सो विल यू नो लिस्टेड इन दैट एक्सचेंज इटसेल्फ. सो ऐसा हमारे को मालूम नहीं.
ठीक है सर. थैंक यू. That's it from my side.
The next question is from the line of Jiten Rushi from Axis Capital. Please go ahead.
Yeah, good afternoon, sir. Thank you for taking my question. So just continuing on the debarment, sorry, I'm harping on it. So sir, I just want to understand, in this 1 month, we make the presentation to the NHAI, what could be the reason and why they have done it. But sir, is there any chances of getting this extended, or it is for 1 month and done?
सर अभी एनएचए देखिए, आने वाली एनएचए किस तरह से एक्शन लेगा, क्या लेगा, इसका अभी अपन कुछ भी ब्रीफ नहीं कर सकते. मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ ये 1 month भी क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हुआ है, जबकि हमारे ऊपर कोई किसी तरह का ब्लेम नहीं है. अभी तक कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का चार्जशीट नहीं है, किसी तरह का ब्लेम नहीं है. लेकिन अब एनएचए ने एक्शन लिया है, उसके ऊपर हम लोग इवेल्यूएट कर रहे हैं और उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लेंगे, एनएचए से बात करेंगे. तो अभी ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसको अपन
बट जनरली जितेन उसमें व्हाट आई वुड प्रॉब्ली प्रिज्यूम इज दैट प्रॉब्ली एनएचआई में गिव द डिपार्टमेंट नोटिस फॉर 3 months एंड देन प्रॉब्ली बाय बेसिस आर रिप्रेजेंटेशन दैट कैन बी कम डाउन टू 1 month और 15 days. ऐसा नहीं होता कि NHAI पहले will be doing one month department and then it will be extending. मतलब there is no point like that. I mean, I don't think this is the industry practice. I don't believe so.
Got your point. Right. So hopefully this should be, because most, as you said, most of the tenders are lined up in December, so we should be able to bid. So in this case, if the tender dates, submission date in December, then obviously we can submit it. That's not a problem. Because it's just for the 1 month. So
we believe so. We will be targeting even for the, November month tenders also will be targeting. As any, we will not be bidding. But then this, we have to evaluate that the content, and we have to go through the contents and we have to evaluate what would be the implication of this debarment. See, we'll try all our level best, you know, to, to have some clarification, to have that, debarment would be, what would be the all implications that we'll be having, you know. It's for 1 month, we have to, you know, go through some NHAI SOPs or any more circular, all that. I don't know, that has to be seen.
I got it. Hope this should, you know, should not have any issue on the embedding process. Sir, if at all I have missed out. Sir, can you tell me the retention money outstanding and unbilled revenue standalone as on September?
So, unbilled revenue, I told in, so that was around, unbilled revenue was around 700, unbilled revenue was 727 crore on a standalone basis.
And retention, sir?
Retention, I'm not having that number readily with me. Probably we can give you, offline.
And so this in H1, we have done investments, SPV.
So retention, again, when we are saying retention is part of debtor only, right?
Sir.
It would be, part of debtor only.
Right. So this debtors of around 1,096 crore is including retention.
Right.
Okay. And sir, on the in the H1, I believe we have invested almost 190 to 200 crore in the SPVs, right, sir?
Right.
So basically, the 450 targeted this year, we already invested almost 200 crore. So the balance H2 will be investing around 250.
Right. So our guidance was 700, for every calendar year. Every financial year. So that, as of now, we are going as per plan.
Hey, so just want to clarify that you said that 450 crore will be for H2 investment.
Yeah, for H2. So for whole year, it would be in the range of 600-700 crore, right?
600-700 crore. Got it. So much. Confused. Okay. And sir, just again, coming back on the order inflow. So we have given a guidance of 15,000 crore. So sir, we maintain that almost 12 to 13,000 will be from the roads and balance 10 to 15% will continue from other segment, right, sir? Like power, T&D, railways, something like that. बिल्कुल हेलो
हाँ जी बिल्कुल यही रेशो रहना चाहिए
बट सर ये पावर टीएनडी फ्यूचर में भी वी विल आल्सो फ्लिप द एसेट ना सर वी डोंट इंटेंड टू होल्ड द एसेट राइट इन द पावर टीएनडी सेगमेंट
यस
एंड सर अगेन ऑन द मार्जिन सो गोइंग फॉरवर्ड सर गाइडेंस ऑन द कोर मार्जिन इज विल रिमेन एट like 15, because obviously that the core margins are still at a lower level compared to the obviously gross margin because of the bonus and the component. Core margin still remains below 15%. So we continue to guide as a core margin 15%, and while including bonus, we continue to guide 16%. Is that understanding correct? Is my understanding correct?
See, generally we are targeting that bonus would be, over and above 15%.
Right.
So that's how we target.
So basically 15% we can assume core margin safely, and 1% to 2% additional for the bonus
company. Right.
And sir, just on the debt, so as you said, we have deferred the debt slowdown at SPV level, obviously because of the lower executable order backlog. But once the project reaches the milestone, so probably from next quarter onwards, we can expect this to normalize and our debtors to come down, right, sir?
See, debtors is probably, I would say, because we haven't drawn down that debt at SPV level, and hence our debtors to SPV is, inflated, right?
Got it.
And why we have not draw down is that because of the liquidity as of now. Because of the liquid position right now we are, passing through within our company. So there is no point, in drawing down the debt from SPV level and paying interest while keeping that cash and bank balances at the company level, right? So that was the main reason.
Thank you. Chetan, if you have any questions, you may join the queue back. Thank you. The next question is from the line of Alok Deora from Motilal Oswal. Please go ahead.
Hi, sir. Good afternoon. Sir, just one question on this recent notification on the debarment. So any tenders which we would have bid if they were to open now, so any thoughts, will they go through or it's only for that period where you can't bid?
सर अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके जो लेटर अभी रिसेंटली मिला है अपने को इसको व्यूरेट कर रहे हैं लोग और मतलब ऐसा लगता नहीं है कि इस तरह का कुछ होना चाहिए कि जो पहले के जो टेंडर है उनपे कोई इफेक्ट होगा ये ओनली फॉर वन मंथ
लेटर वैसे बोलेंगे तो बोलेगा इट्स अ डिपार्टमेंट फॉर वन मंथ फ्रॉम वन मंथ स्टार्टेड फ्रॉम टूडे और डे बिफोर जो भी है पर देन पॉइंट इज जो आज से छह महीने पहले मैंने बिड कर दिया है काम ले लिया है कर रहा हूँ उस पर कैसे इम्पैक्ट आता है आई डोंट थिंक दैट देयर वुड बी एनी इम्पैक्ट
बिड किया और टेंडर ओपन होना बाकी है और सपोज वो ये मंथ में ओपन होता है तो दैट्स व्हाट आई
वाज मतलब लॉजिकली तो मतलब व्हेन आई पार्टिसिपेटेड व्हेन आई बिडेड देन आई वाज नॉट डिपार्ट तो लॉजिकली तो ये नहीं होना चाहिए बट देन अगेन माई पॉइंट इज दैट इट हैज टू बी इवेल्युएटेड I mean, I can't say without, you know, going through the documents or what is the processes or what are the practices which, you know, generally been adopted by MOOT or NHI or whatever in this case.
And sir, ye jo L1 hai order book mein, 592 crore, wo to sir abhi kafi time se hai, to abhi, matlab, why are we not, like, uspe kuch update hai ya we are looking to remove it?
Sir, abhi tak, abhi ye kya hai, 592 ka ye metro ka project hai. काफी एक्सपेक्टेशन थी अभी ये दिसंबर तक इन्होंने कहा है हमको ये दिसंबर तक मतलब इसका इस बार जो है दिसंबर तक इनका पता चल जाएगा अभी या तो ये फिर प्रोजेक्ट हमको अवार्ड करेंगे और अदरवाइज फिर हम आगे इसको लेकर नहीं जाएंगे फिर बैंक जाएंगे आने वाले टाइम मतलब दिसंबर तक हमको होप है कि ये प्रोजेक्ट हमको मिल जाना चाहिए
श्योर श्योर एंड जस्ट लास्ट क्वेश्चन तो सर अभी जैसे वी आर लुकिंग एट अ मैसिव ऑर्डर इनफ्लो इन you know, effectively Jan se March tak. Abhi, we see all the other players also are talking about very strong order inflow during this period. So, abhi, is there a downside risk ki utna orders na paaye because competition bhi heavy rahega wo period mein bhale, you know, or because a lot of these people will be queuing up. So, any downside risk you see ki order inflow thoda kam ho sakta jitna estimate kiya usse?
बहुत अच्छी है और मुझे लगता नहीं है कि उतना मतलब सभी के लिए मतलब स्पेस है अभी फिलहाल तो इस साल की जो पाइपलाइन में जो जितने प्रोजेक्ट्स हैं तो इस एम्पल स्पेस फॉर एवरीवन और जिस तरह के हैम के अंदर जो अभी पिछले रिसेंटली जो कंपटीशन जो कूल डाउन हुआ है उसको देखते हुए मुझे इसका चैलेंज नजर नहीं आता है
जस्ट लास्ट क्वेश्चन सर एक्चुअली सो सर अभी ये जो पावर टीएनडी प्रोजेक्ट है उसमें अभी कितना मार्जिन अपन वी आर लुकिंग एट बिकॉज इफ यू सी सम अदर कंपनीज दे टिपिकली आर मेकिंग यू नो सिंगल डिजिट मार्जिन और यू नो 5-10% के बीच में मार्जिन बैठता है उसमें प्योर ईपीसी पोर्शन ऑफ द टीएनडी प्रोजेक्ट तो व्हाट्स द नंबर वी आर वर्किंग विद
सर ये देखिए इस लाइन में अभी पावर ट्रांसमिशन में हम लोग एंटर हुए हैं
right.
अभी जो फोकस जो है वो मार्जिन पे नहीं है फोकस लर्निंग पे है हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट की लर्निंग प्रॉपर टाइम पे कैसे डिलीवर किए और क्या चैलेंजेस है इसको प्रॉपर समझ सके फिलहाल फोकस यही है मार्जिन का अभी क्योंकि आते ही किसी बिजनेस में मार्जिन करूंगा तो फिर बिजनेस है नहीं मेरे पास में वो अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आएगा सर
गॉट इट सर ठीक है सर थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट सर
थैंक यू पार्टिसिपेंट्स इफ यू विश टू आस्क एनी क्वेश्चंस प्लीज एंटर स्टार एंड वन A reminder to all the participants, if you wish to ask any questions, please enter star and one. Next question is from the line of Navid Virani from Bastion Capital Management. Please go ahead.
Hi, sir. Thank you for the opportunity. Sir, pichle do quarters se hum dekh rahe hain ki hamare consolidated levels pe margins are coming out to be very strong at all levels. So, sir, just wanted to understand ki, actually I missed the opening remarks as I joined slightly late. Ki yahan par, is it because of the kind of bonuses we are getting? Is ki wajah se aisa margin aa raha hai? Matlab, how should I, matlab, we look at you know, consolidated level margins going forward?
See, our consolidated margin largely coming because of, you know, that interest income which we are getting from NHAI on the operational HAM projects, right? And interest income in last 6 months you have seen, it's you know, it's been rising, right? And it's quite high, it has gone quite, it's almost, RBI is raised by 2% almost. So it's all because of this that we, you know, our income is, you know, rising at SPV level, and hence that consolidated margin are rising.
So this is only because of the rising interest rates and the rate going forward as well, given the interest rates don't change.
Right.
Okay, sir. Thank you. That's it for me.
Thank you.
Participants, if you wish to ask any questions, please enter star and one. As there are no further questions, I would now like to hand the conference over to management for closing comments.
Sabhi ko bahut bahut dhanyawad. और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कंपनी पूरी लगन के साथ में पूरी मेहनत के साथ में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं काम करती रहेगी और एक्सपेक्ट करता हूं कि सभी इन्वेस्टर बैंकर्स हमारा इसी तरह से साथ देते रहेंगे और अच्छे भविष्य के लिए अपन सभी साथ मिलकर काम करेंगे इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें अपन पार्टिसिपेट करेंगे मोदी जी ने जिस तरह से एजेंडा जो $5 trillion इकोनॉमी का किया है अपन भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे Thank you.
Thank you, Ajinder ji and Anand ji for this opportunity. We can disconnect the call. Thank you.
Thank you very much.
On behalf of HDFC Securities, that concludes this conference. Thank you for joining us and you may now disconnect your lines.